जय धवला पुस्तक सोहळवी लेक्चर नंबर 11 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम श्रुतात्मने नमः प्रणमो नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसानूनम् मुनिय परमर्थ वित्तर मुनिवर वीरेहि सिद्ध विजयी जासन्तु आपयवदी पश्यौ सुयदेवया मध्यम् सुसुदेवयाय भक्ति सुदो वजोगो भाव्यो सम्मम् आवहैनान सिद्धिम् नानफलम् चाविनिवाणम् तो सुदेवयमिणम् तिक्कुत्तोपणमियो न भक्तिये ोच्छामि जहासुतम् चारित्रमोहसकवणविहीनम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है जो कषार पाहुर तथा चोरनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशुव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 16वीं पुस्तक में चारित्र मोक्ष अपना का अपना अर्थाधिकार जो चल रहा है, 15 नंबर का अर्थाधिकार, उसको देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 125 पर आ गए। 125 शीन कषाय गुणस्थान में क्या क्या हो जाती है बात वो यहाँ बता दी थी कि यहाँ क्या होता है कि संपूर्ण मोनी का क्षय कर दिया है इसने, तो यहाँ अन्य सभी कर्मों का स्थिति अनुभव प्रदेश प्रकृति सब बंद रुक जाता है, एक साता वेदिनी का ही बंद होता है और वो भी कैसा है, एरिया पद बंद कहते हैं, उसमें स्थिति और अनुभाग नहीं होता है, दूसरे ही समय में वो नष्ट हो जाता है। यहाँ असंख्यात गुणी निर्जरा होती है पहले से भी, ये बात हमने कल देखी थी। अब कहते हैं कि जो एक आवली और एक समय बाकी है तब तीन घाती कर्मों का वो अंतिम उदीरक वहां तक है, बाद में वो नहीं होता, बाद में तो एक एक समय करके उदय रूप होकर फिर जाएंगे। द्वितीय यानी द्विचरम समय में निद्रा और प्रचला की उदय और सत्व विच्छित्ति हो जाती है और फिर अंत समय में ज्ञान और दर्शनान्तराय के सत्व की और उदय की विच्छित्ति हो जाती है। यहां तक हमने पढ़ा था। 125 पृष्ठ पर शंका पूछ रहे हैं कि जैसे घाती कर्मों का यहाँ पर क्षय हो जाता है उसी प्रकार अघाती कर्मों का भी यही क्षीण कषाय गुणस्थान के अंतिम समय में निर्मूल क्षय क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि कर्मपने की अपेक्षा उन दोनों में कोई भेद नहीं है। ये प्रश्न है। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि घाती कर्मों के समान अघाती कर्मों का विशेष घात नहीं होने के कारण, घाती कर्मों में जैसे अधिक घात हुआ था यानी उसके स्थिति कांडक वगैरह जो होते होते उसकी सत्ता जल्दी नष्ट हो गई थी, तो कहते अघाती कर्मों का विशेष घात नहीं होने के कारण उनका अब भी पल्लोगों के असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति सत्कर्म समुपलब्ध होता है, यानी यहाँ अवशेष है, यानी अभी क्षीण कषाय गुणस्थान के अंत में भी उसकी सत्ता कितनी, तो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण इसकी, तो इसकी भी पूर्व में थी परंतु वो जल्दी घात होकर नष्ट हो गई है प्रकृति विशेष के कारण, उनमें ऐसी बातें बनती। क्योंकि हमने पूर्व अवस्था में संसार अवस्था में तो देखा था ज्ञान आवरण आदि, उसकी तो स्थिति तो 30 कोड़ाकोड़ी सागर बन गई, नाम गोत्र की तो 20 है। तो हमने देखा ना वो क्रम कर्म उल्टा पुलटा हो जाता है ना, पहले उसकी स्थिति ज्यादा थी, बंध भी ज्यादा था, वो नाम कर्म के भी नीचे आया था, मोहनी उससे भी नीचे आया था, तो प्रकृति विशेष के कारण उसमें घात अधिक हुआ था। और इन कर्मों के विशेष घात का अभाव असिद्ध नहीं है, विशेष अभाव असिद्ध नहीं है, विशेष घात का अभाव होता है, ये बात सिद्ध है। चार नेगेटिव आ गए ना, असिद्ध नहीं है नहीं सिद्ध है, क्या सिद्ध है? घात का अभाव सिद्ध है, यानी घात नहीं होता है, ये बात सिद्ध होती है, क्योंकि घाती कर्मों के समान उनमें विशेष अप्रशस्त पने का अभाव है, अभाव नहीं अभाव है। ये भले वो अप्रशस्त हो परंतु अधिक अप्रशस्त नहीं है, इसलिए इस अपेक्षा से उनके विशेष घात के अभाव का समर्थन होता है। इसलिए घाती कर्म पने की अपेक्षा विशेषता न होने पर भी, घाती कर्म के कर्म पने की अपेक्षा, घाती कर्मों की घाती कर्म पने की अपेक्षा विशेषता न होने पर भी, जैसे मोहनी कर्म के, अच्छा वो दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, यानी सभी घाती कर्म तो घाती ही है, ये अन्य तीन घाती कर्म या मोहनी कहो, तो घाती कर्म की अपेक्षा विशेषता यानी डिफरेंस नहीं होने पर भी, जैसे मोहनी कर्म के अत्यंत अप्रशस्त पने के कारण पहले ही विशेष घातवश सूक्ष्म सांप्रायिक के अंत समय में विनाश की सिद्धि होती है, उस प्रकार। अब यहाँ कंपेयर और दृष्टांत कैसा दे रहे, चारों घाती कर्म है फिर भी मोहनी कर्म विशेष और प्रशस्त है, इसलिए उसका घात पहले हुआ सूक्ष्म सांप्राय के अंत में और बाकी तीन का बारहवें के अंत में, ये तो उदाहरण दिया। इस प्रकार कर्मपने की अपेक्षा विशेषता न होने पर भी अघाती कर्मों को छोड़कर शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि शिखा के द्वारा कवलित हुए, कवलित होना समझते, कवलित होने ने उसको खा जाना, अग्नि के द्वारा किसको भक्षण किया जाता है, अग्नि किसका भक्षण करती है, जो चीजें वहां जलने योग्य है उसका, तो कहते अग्नि शिखा की उपमा किसको दिया है, शुक्ल ध्यान को, शुक्ल ध्यान यानी अग्नि के द्वारा सामने वाली चीज का उसको लपेट लेती है, खा जाती है, नष्ट कर देती है, वैसे तो जो ध्यान रूपी अग्नि है वो क्या कहती है, घाती कर्मों का ही क्षीण कषाय के अंत समय में उत्पाद अनुच्छेद नहीं की अपेक्षा, यानी है वहीं पर नाश कहने की अपेक्षा निर्मूल क्षय हो जाता है, यह सिद्ध होता है। पहले उन्होंने अपेक्षा बता दी, नहीं तो कशंकाकार फिर पूछ लेते ना, अभी है वो समूल नाश क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर क्षय ऐसा कहने पर कर्मस्कंद संसारी जीवों के समस्त प्रदेशों के साथ बंध की अपेक्षा एक रूप से परिणत हो रहे हैं, बंध के कारणों के प्रतिपक्षभूत मोक्ष के कारण रूप परिणाम रूप यंत्र के द्वारा, ये परिणाम, पहले परिणाम कैसे थे, बंध के कारणभूत थे, अब परिणाम कैसे, मोक्ष के कारण रूप परिणाम रूप यंत्र के द्वारा पहले जाने वाले उनका, यानी ये कर्म कैसे है, क्षय यानी जो कर्मस्कंध था वो जीव के साथ बंध की अपेक्षा से एक रूप होकर परिणमित हुआ था, बंध की अपेक्षा एक में जैसा हो गया था मान लो, अब क्या कहते हैं, मोक्ष के कारण रूप परिणाम हुए जीव के, उसके द्वारा क्या, जैसे यंत्र में फैली जाती है चीजें, जैसे तेल वगैरह निकालते हैं ना उसमें से, बिल्कुल तो ऐसे उनका जीव से पूरी तरह से अपसरण हो जाए, अपसरण हो जाने निकल जाना, बंधे हुए थे वो बिल्कुल परिपूर्ण रीति से निकल जाना, उसका नाम क्षय है। ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जीव से पृथक होकर अकर्म रूप से परिणत हुए कर्म पुद्गलों का पुद्गल रूप से सर्वथा क्षय नहीं हो जाता। क्या कहा, वो पूरा हम नाश कहो या क्षय कहो तो पुद्गल परमाणु का क्षय हो जाता है ना, पुद्गल पने से क्षय नहीं हुआ है उसका, वो उसका पुद्गल तो पुद्गल रूप है परंतु कर्म रूप से क्षय हुआ, कर्म है वो अकर्म रूप हो गए, जीव के साथ बंधे हुए थे वो छोड़कर चले गए, उसका अन्य परमाणु रूप से जो कुछ परिणाम हो गया है। इसलिए जिस प्रकार मणि से मलादिक की निवृत्ति क्षय कहलाती है, मणि समझते हैं, हीरा जवाहरात जो कुछ है। हाँ, अब क्या कह रहे
हैं,
परस मणि। तो देखो उसमें क्या कहते हैं, पहले वो खदान में हीरा मिलता है तो उसको तराशते हैं, ने क्या करते हैं उसमें से जो कुछ अशुद्धि वो निकाल देते, तो इसे यहाँ कहते मणि से मलादिक की निवृत्ति, यानी उसमें से मल निकल जाना क्षय कहलाती है, उसको क्षय कहते हैं, उसको वो मल का क्षय हो गया। क्योंकि सत का सर्वथा विनाश नहीं हो सकता, निकल जाने को ही क्षय कहा, क्योंकि जो सत रूप है पुद्गल परमाणु तो द्रव्य है, उसका तो विनाश कभी नहीं हो सकता है, तो सत का सर्वथा विनाश नहीं हो सकता। उसी प्रकार आत्मा से भी कर्मों की निवृत्ति होने पर, निवृत्ति होने वाले निकल गए, छोड़ गए, परिशुद्धि होती है, यानी आत्मा परिशुद्ध हुआ, परिपूर्ण शुद्ध हुआ ऐसा कहेंगे हम, और कर्म नष्ट हुआ कहेंगे, क्षय हुआ कहेंगे, परंतु कर्म अकर्म रूप हो गए हैं, पुद्गल रूप से वो क्षय नहीं हुए। अब आगे सूत्र पढ़ेंगे, एथुद्देशे क्षीण मोहद्धाय परिबद्धा एक्का मूल गाहा विहासी अववा। इस स्थान पर क्षीण मोह के काल से संबंध रखने वाली एक मूल गाथा की विभाषा करनी चाहिए, क्योंकि वह अवसर प्राप्त है, यानी इस विषय से संबंधित है। ये जो मूल गाथा है वो 180 है, उसमें से वो 179 नंबर की गाथा भी चलेगी। तिससे समुत्कीर्तना, उसकी समुत्कीर्तना, समुत्कीर्तना यानी गाथा कहना है, वो उसकी समुत्कीर्तना है, कथन, समुत्कीर्तना यानी कथन, 179 नंबर की गाथा। और आगे जो 232 नंबर दिया है वो तो भाष्य गाथाओं के साथ नंबरिंग किया हुआ गाथा पढ़ेंगे। खीने सुकसाए सुय शेषाणम् केवहोंति विचारा खवणावा पन्दोदय निचरावापि। कषायों के क्षीण हो जाने पर, खीनेषु कषायेषु, शेष ज्ञानावरणादि कर्मों के कितने क्रिया परिणाम होते हैं, ये तो हमने पहले तो उसके संबंध में व्याख्यान देखा ही है, पढ़ा ही है, अब गाथा के आधार से फिर दोबारा करेंगे। तो कहते ज्ञानावरणादि कर्मों के कितने क्रिया परिणाम होते हैं, क्रिया परिणाम में क्या यहाँ स्थितिबंध होता है कि नहीं होता है, स्थिति सत्व कितना है, अनुभाग में क्या पोजीशन है, उदय किस प्रकार से होता है, ये क्रिया परिणाम कहेंगे। उनकी क्षपणा होती है या नहीं होती, और क्या प्रश्न है, बंद उदय निर्जरा क्या होती है, क्या होती है, नहीं होती है क्या, ऐसा। यह मूल सूत्र गाथा क्षीण कषाय विषयक समस्त प्ररूपणा का पृच्छामुख से कथन करती है, प्रश्न के द्वारा उसका कथन करती है, ऐसा कहते हैं। यथा क्षीणेषु कषायेषु ऐसा कहने पर अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानों में प्रथम शुक्ल ध्यान संबंधी ध्यान रूप परिणाम से, यानी पहले प्रथम शुक्ल ध्यान से ही यथाक्रम कषायों के पूर्वोक्त विधि से क्षपित हो जाने पर क्षीण कषाय गुणस्थान में प्रविष्ट हुए जीव के प्रविष्ट चाहिए ना, प्रविष्ट लिखा है पविष्ठस्य, प्रविष्ट होना चाहिए, ये प्रवेश किए हुए उस जीव के उस अवस्था में, अभी कोई करेक्शन नहीं यहाँ पर होगा तो पहले बताना, 127 ट्वेंटी लंबा है ये, कम्मोदयम वाला 126 पर था, कम्मोदय कम्मोदयम तो यहाँ पढ़ रहे थे, फिर पढ़ती हूँ मैं कि क्षीण कषाय गुणस्थान में प्रविष्ट हुए जीव के उस अवस्था में शेषाणम कम्माणम अर्थात शेषाणम कम्माणम, शेषाणम के लिए इन्वर्टेड है, अच्छा मैंने शेष कौन कौन से वो बताते अभी, अर्थात ज्ञानावरणादि कर्मों के केव होंती विचारा, अर्थात क्या क्रिया परिणाम होते हैं, खवना वा अखवना वा बंधोदया निर्जरावा, अर्थात उन कर्मों की क्षपणा होती है या क्षपणा नहीं होती, बंध उदय और निर्जरा क्या होती है, किन कर्मों की किस प्रकार की होती है, इस प्रकार उक्त सूत्र का अर्थ के साथ संबंध के वश से यह मूल सूत्र गाथा क्षीण कषाय गुणस्थान विषयक संपूर्ण प्ररूपणा का पुच्छा मुख से ज्ञान कराती है, सूत्र गाथा है ना, ज्ञान कराती है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इस मूल सूत्र गाथा की भाष्य गाथाएं नहीं है, क्योंकि यह सूत्र गाथा सुबोध है, इसलिए इसकी अर्थ प्ररूपणा करते हैं। कृष्टियों के विषय में 11 मूल गाथाओं के अर्थ का कथन करने पर, अर्थ का अर्थ अथे भन्न माने, अर्थ का कथन करने पर जा डायरेक्ट अर्थ के अर्थ का नहीं, अर्थ का कथन करने पर अथे भन्न माने, जिस प्रकार उनका कथन किया है उसी प्रकार का इसका पूरा कथन करना चाहिए। पहले हमने 11 मूल गाथा देखी थी और उसमें बहुत सारी भाष्य गाथाएं भी देखी थी, ये अपने 15 नंबर के पुस्तक, क्योंकि उक्त कथन से इसके कथन में कोई विशेषता नहीं है, इतनी विशेषता है, कोई विशेषता नहीं कहने पर भी कहाँ डिफरेंस है वो बताएंगे कि स्थिति घात, स्थिति सत्कर्म, उदय उदीर्णा, स्थिति कांडक और अनुभाव कांडक, इतनी क्रियाएं कहनी चाहिए। क्या क्या क्रिया होती है यहाँ पर, स्थिति घात, स्थिति सत्कर्म, उदय उदीर्णा, स्थिति कांडक और अनुभाव कांडक, खवनावा अखवनावा ऐसा कहने पर, इस प्रकार यह पद कषायों के क्षीण होने पर क्षीण कषाय गुणस्थान में तीन घाती कर्मों की क्षपणा विधि की और अघाती कर्मों के क्षपणा के अभाव की उस समय अपेक्षा करता है। क्षपणा होती है या नहीं होती पूछा गया है, कहते तीन घाती कर्मों की होती है, अघाती की नहीं होती। बंधोदय निज्जरा वापी, इस प्रकार इस पद यह पद क्षीण कषाय जीव के गुणश्रेणी निर्जरा विधि को तथा वहां स्थितिबंध अनुभाग बंध और प्रदेश बंध के प्रतिषेध द्वारा, इन कर्मों के बारे में पूछा गया था, तो इनका भी स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध का प्रतिषेध है। उसके द्वारा प्रकृति बंध संबंधी ही संभव उदय और विदीर्णा विशेष को सूचित करता है। यानी वहां जो उदय और उदीर्णा पाई जाती है उसकी बात बताएंगे। ऐसा यहाँ उक्त पदों के अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इतने अर्थ की विभाषा करने पर इसके बाद क्षीण मोह से संबंध रखने वाली यह मूल सूत्र गाथा समाप्त हो। इसका विषय तो पहले समझा दिया है, अब गाथा भी बता दी उन्होंने। संपहि इत्थे उद्देशे एका संग्रहण मूल गाहा विहासे उपवा। अब इस स्थान पर एक संग्रहणी मूल सूत्र गाथा की विभाषा करनी चाहिए, क्योंकि वह यथावसर प्राप्त है। शंकाकार पूछते हैं संग्रह किसका नाम है, क्योंकि इसको संग्रहणी मूल गाथा कहा ना, तो संग्रह किसको कहना है। उसका समाधान, चारित्र मुनि की पहले विस्तार से प्ररूपणा कर आए हैं, उसका द्रव्यार्थिक शिष्य जनों का अनुग्रह करने के लिए संक्षेप से प्ररूपणा करने का नाम संग्रह है। हम कहते हैं तात्पर्य, इसलिए पूर्वोक्त समस्त विषय का थोड़े में उपसंहार करने वाली मूल सूत्र गाथा संग्रहणी मूल गाथा कही जाती है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। तिससे समुक्कीर्तना, अब उसकी समुक्कीर्तना करते हैं। गाथा पढ़ेंगे ऊपर की 180 नंबर की। शंका मनमो वट्टण किट्टी खवणाय कीन मोहन्ते खवणाय आनुभूवि बोधौ मा मोहनी अस। क्षीण मोह गुणस्थान के अंत होने के पूर्व तक, अर्थात मोहनीय कर्म के क्षय होने के अंत तक, संक्रमणा अपवर्तना कृष्टि क्षपणा के क्रम से मोहनीय कर्म की अनुपूर्वी से क्षपणा जाननी चाहिए। क्रम से होती ना, विशिष्ट क्रम से उसकी क्षपणा होती है। तो क्या क्या होता है उसमें, संक्रमण होता है, अपवर्तन होता है, कृष्टि की क्षपणा होती है, और वो भी क्रम से होती है एक एक कषाय। अभी हम आते संक्रमण होना, अपवर्तन यानी वो अपकर्षण आदि होकर अनुभाग घटना, वो सब अपवर्तना में आता है। संक्रमण में भी अपकर्षण को भी संक्रमण कहते हैं, अनुभाग घटने को भी संक्रमण कहते हैं, पर प्रकृति रूप होने को भी संक्रमण कहते हैं। तो वो सब यहाँ चल रहा है। अभी यहाँ आते 129 पेज पर कोई प्रश्न पूछा आपने। हाँ ये लास्ट गाथा है, 180 ही है मूल। इसमें जो मूल जो गाथा है वो 180 ही है। ये वाली होगी ना, 200 कितनी है। हाँ हाँ आपको कहते हैं कि ये जो नहीं, मगर उनकी अपनी है ना 232 233। पहले भी उन्होंने फ्लावर्स दिए थे, 126 पर दिया हुआ है, क्योंकि उनकी भी उसमें गाथा है, उसका नंबरिंग भी है ना। अभी यहाँ 233 नंबरिंग भी किया है उन्होंने, भाष्य गाथा सहित वाली है। तो यहाँ कहते हैं 28वीं अच्छा अच्छा इसमें क्षपणा संबंधी, यह 28वीं मूल सूत्र गाथा चारित्र मुनि संबंधी प्रकृतियों की परिपाटी क्रम से क्षपणा विधि का ज्ञान कराती है। शंका, वह कैसे, समाधान। संक्रमण, संक्रमण कहना, संक्रमण लिखना। ऊपर मैं प्राकृत में देखकर बता रही हूँ, संक्रमण मूल प्राकृत शब्द रखा है उन्होंने। एक काम मनाई था उसका, वो तो सेपरेट हुआ, रस्सों की खाली बिंदी आई है, उसको शंका करना, संकामण पूरा शब्द ही लिखो अच्छा है। इन्वर्टेड मैंने प्राकृत मूल शब्द जैसे ऊपर से दूसरी लाइन में है ना उन्होंने लिखा है वैसा ही लिखना है। तो संकामण ऐसा कहने पर अंतरकरण करके जब तक छह नौ कषायों की क्षपना करता है तब तक इस अवस्था की संक्रामणा यह संज्ञा है। बहुत अच्छा बताया, हमने बताया पहले भी होता था कि आठ कषायों की क्षपना तो की थी उसने, उसको यहां नहीं लिया। अंतरकरण करने के बाद क्या होता है, तीन वेद और ये छह नौ कषाय, यानी टोटल नौ नौ कषायों की क्षपना होती है। तो कहते अंतरकरण करने करके जब तक छह नौ कषायों की क्षपना करता है तब तक इस अवस्था की संक्रामणा यह संज्ञा है, क्योंकि नपुसक आदि परिपाटी क्रम से नौ नौ कषायों का यहां पर अन्य प्रकृतियों में संक्रम कराने रूप कार्य देखा जाता है। ओवर्तना ऐसा कहने पर, ओवर्तना का अर्थ पूछा था ना, अश्वकरण करणधा, इसको अश्वकरण किया जाता है उसमें तो अपूर्व स्पर्धक भी होते हैं, और कृष्टिकरण अध्या अध्यायनिक काल, यानी वो अश्वकरण करने करना पुष्टि करना ये यहाँ ग्रहण हुआ, इनको ग्रहण करना चाहिए क्योंकि उस अवस्था में चार संजलनों के अनुभाग की अश्वकरण करण रूप से अपवर्तना देखी जाती है। हाँ, उसको संक्रमण कहा है और यहाँ खास अनुभाग की अपवर्तना, इसलिए अपवर्तना में इसको लिया। बाद में वो संक्रमण नहीं होता वो बात नहीं है। किट्टी खवना या ऐसा कहने पर ये उसके शुरू में इन्वर्टेड देना, सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान के अंत तक पुष्टि वेदक काल जानना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में यथाक्रम क्रोधादि कृष्टियों की क्षपना देखी जाती है। कहां तक वो बताए, पर कहां से, तो जब से पुष्टि वेदक शुरू हुआ था तब से, नवे में ही शुरू हुआ था ना पुष्टि वेदक काल। क्षीण मोहनते ऐसा कहने पर क्षीण कषाय गुणस्थान को मर्यादा करके उससे पहले ही चारित्र मोहनीय की क्षपना प्रवृत्त होती है, उससे आगे नहीं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार यानी ये जो गाथा में शब्द आए थे, संकामण ओवर्तना किट्टी खवना और खीण मोहनते, इन गाथाओं के मध्य इस प्रकार इन अवस्थाओं के मध्य संक्रमणा अपवर्तना और पुष्टि क्षपणधा संज्ञक, संज्ञक यानी नाम वाले संज्ञा वाले कार्यों के होने पर, यानी यहाँ संक्रमण होता है अपकर अपवर्तन होता है पुष्टि की क्षपणा होती है, तो ये सब कार्य होते हैं। ऐसे होने पर क्षीण कषाय के काल के अंत होने के पूर्व तक अर्थात दसवें गुणस्थान तक खवनाय अर्थात मोहिनी कर्म की क्षपणा रूप क्रिया की अनुपूर्वी अर्थात परिपाटी जाननी चाहिए, यानी विशिष्ट उसका क्रम है, सीक्वेंस है। इस प्रकार यह संग्रहणी मूल गाथा संक्षेप से मोहिनी कर्म की क्षपणा संबंधी परिपाटी की प्ररूपणा करती है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इस मूल गाथा की भी भाष्य गाथा नहीं है, क्योंकि सुगम अर्थ से संबंध रखने वाली इस मूल गाथा का भाष्य गाथा के बिना ही अर्थ का निर्णय बन जाता है, और इसीलिए ही चुनी सूत्रकार ने इन दो मूल गाथाओं की समुत्कीर्तना और विभाषा आरंभ नहीं की है, क्योंकि यह मूल गाथा सुगम अर्थ की प्ररूपणा करती है। इसलिए यदि इनकी भाषा गाथाएं लिखी जाती तो ग्रंथ की गुरुता बढ़ जाने को छोड़कर उससे कोई फल विशेष प्राप्त होने वाला नहीं है। ब्रैकेट में शब्द डालकर उन्होंने वाक्य ठीक तरह से पूरा कर दिया। यानी वो गाथाएं डालने से क्या होता, तो ग्रंथ बढ़ जाता और उससे कुछ दूसरा फायदा तो नहीं होता। अथवा इस मूल गाथा का अर्थ आगे चूलिका गाथाओं द्वारा कहेंगे। चूलिका ने जो बताया है उसको फिर दोबारा बताना, उसमें से और कुछ विशेष बातें बताना, या शिष्यों को और फिर दोबारा उसमें से कुछ अलग अपेक्षाओं से करना, ये सब उसमें आता है चूलिका। इसलिए वहीं पर उसका निर्णय करेंगे। इसके आगे नहीं, आपने ख्याल में आता है आगे चूलिका आने वाली और उसमें विशेष कथन इसका आएगा। इस प्रकार इतने प्रबंध के द्वारा क्षीण कषाय गुणस्थान के अंतिम समय में तीन घातिकर्मों के पूरे क्षय का उपदेश करके, अब क्षीण कषाय गुणस्थान के अनंतर समय में अब कौन सा गुणस्थान होगा तेजल? अभी तक क्षीण कषाय में था, उसके अनंतर समय में कौन सा गुण? तेरव। हाँ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करके नव केवल लब्धि से परिणत हुआ। ये नव केवल लब्धि क्या है मालूम है मंजू भाई? हाँ, पहले ज्ञान दर्शन के बाद क्या बताए? शायिक सम्यक। हाँ, शायिक चारित्र और ये पांच, ये जो नौ होते हैं क्षायिक गुण प्रकट होते हैं। देखो हमारे पास चार घाती कर्म है, उनके क्षय से क्या क्या प्रकट होगा? क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, मोहिनी में क्षायिक सम्यक, तो क्षायिक चारित्र, और बाकी पांच कौन से अंतराय वाले की जो पूर्ण प्रकट होंगे? क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इन सबको नाम क्या है? नव क्षायिक लब्धि। वो पर्याय जो है, पहले तो सौक्षम आदि रूप जो थी, अभी क्या हुई? क्षायिक हो गई, तो उसको कहेंगे लब्धि। कुछ प्राप्ति हुई ना, लब्धि है ना प्राप्ति हुई, इसको कहते हैं नव क्षायिक लब्धि प्राप्ति। नव क्षायिक लब्धि रमाधरंत, ऐसा ही अरिहंत भगवान की स्तुति में आता है। नहीं सुना? हाँ, सकल ये। तो कहते केवल ज्ञान को उत्पन्न करके, यानी केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, क्योंकि ज्ञानावरण का पांचों ही ज्ञानावरण बिल्कुल नष्ट हो गए। नव केवल लब्धि से परिणत होता हुआ परम स्नातक गुणस्थान को प्राप्त करके, कल निर्ग्रंथ कहा था, बारहवें में आया, तब अब इसको नाम कहेंगे स्नातक। ये सर्वज्ञ दशा होती है, उसको कहेंगे भगवान संयोग केवल सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है। संयोगी केवल ही चाहिए, संयोगी केवल, संयोग केवली, केवली करना उसको, भगवान संयोगी केवली सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है। इस प्रकार इस तथ्य के प्रतिपादन की इच्छा रखने वाले परमर्षि यति ऋषभ आगे के सूत्र को कहते हैं। ये सूत्र जो चूर्णी सूत्र लिखे हैं, यति ऋषभ नाम के आचार्य ने लिखे हैं। तभी वो ये जो केवली भगवान के बारे में अभी यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। तदो अनंत केवल नान दंसन वीर्य जुत्तो जिनो केवली सौवन्नो सौवदरिशी भवदी सजोगी जिनोत्ति भन्नई। तदनंतर अनंत केवल ज्ञान, अनंत केवल दर्शन और अनंत वीर्य से संयुक्त होता हुआ जिन सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होता है, उसी को सयोगी जिन कहते हैं। तदनंतर घाती कर्मों के क्षय होने के अनंतर समय में भ्रष्ट बीज के समान, भ्रष्ट बीज का अर्थ क्या होता है? देखो बीज जो है वो फिर दोबारा बोते तो उगता है, परंतु ये बीज कैसा है भी भ्रष्ट हुआ। हम ऐसा भी देखते हैं ना, चना जब बोते हैं तो उसमें से वो चने का वृक्ष आएगा और उसको भी सेक लो अच्छी तरह से, भून लो, तो क्या होगा, उसको वहां वृक्ष आएगा कि नहीं आएगा? वो नहीं, वो तो बीज वो तो भ्रष्ट हो गया। जिसने चार घाती अघाती कर्मों को निशक्त कर दिया है, अघाती क्यों लिखा, हाँ अघाती को, और इसको तो नाश ही कर दिया है। चार ही अघाती कर्मों को निशक्त कर दिया है और जो अनंत केवल ज्ञान, अनंत केवल दर्शन और अनंत वीर्य से संयुक्त हो गया है, ऐसा होकर जो स्वयंभू होने से, स्वयंभू शब्द कैसा तैयार हुआ, भू यानी होना, स्वयंभू स्वयं ही प्रकट हुआ है, आत्माधीन पने को प्राप्त होता हुआ, यानी स्वाधीन है, आत्माधीन को या स्वाधीन है, दूसरे के मेहरबानी से कुछ नहीं हुआ है, तो आत्माधीन पने को प्राप्त हुआ जिन केवली सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है, वही भगवान अरहत परमेष्ठी और सहयोगी जिन कहा जाता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, अरहत, अरहत यानी पूजनीय, त्रिलोक के द्वारा जो पूजनीय वंदनीय हो जाते हैं उसको कहेंगे अरहत। ये अरहत शब्द अलग अलग है ना, अरिहंत कहते हैं, अरहंत कहते हैं, अरुहंत भी कहते हैं, अरहत यानी वो तो पूजनीय, ऐसा अर्थ होता है। वहां उस अवस्था में इरियापथ बंद का हेतु होने से, इरियापथ बंद किसको कहा था ये याद है, हाँ बोल। देखो यहाँ सातावेदिनी परमाणु का ग्रहण होता है एक समय के लिए और वो चले जाते, दूसरे समय में नहीं रहते, एक समय के लिए आए बस, तो उदय रूप होते हुए भी वो चले जाते, दूसरे समय में उदय होता है ऐसा भी नहीं कहते, दूसरे समय तो है ही नहीं उसकी सत्ता, तो कथन के लिए कहेंगे दूसरे समय में जाते हैं या कथन में उसी समय जाते कहेंगे, तो उसको कहेंगे इरियापथ बंद। ऐसा हेतु होने से, उसका कारण क्या है, उस अवस्था में इरियापथ बंध का हेतु होने से वचन और काय के परिस्पंदन लक्षण योग विशेष का सद्भाव रहता है। यहाँ बंध का कारण क्या है, अभी तक हमने देखे थे संसार अवस्था में बंध के कारण क्या है, बोलो बंध क्यों होते हैं किसी चीज को, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग। अभी दसवें गुण स्थान तक तो कषाय मिट गया, अभी क्या रह गया, योग रह गया है। योग को कैसे कहा, परिस्पंदन, परिस्पंदन यानी उसको कंपन कहते, आत्म प्रदेशों की चंचलता कहते, ये बंद का कारण बताया। कौन से लिया, वचन और काय लिया, मन छोड़ दिया है, क्यों, मनो द्रव्यमन की रचना है उसका ग्रहण है, परंतु वो उपचार से कह दिया, उसका जो जानने रूप कार्य नहीं होता है, मन के द्वारा जानने रूप कार्य नहीं होता है, तो इसलिए वचन और काय के परिस्पंदन लक्षण योग विशेष का सद्भाव रहता है, यह इस सूत्र का अर्थ है, ये उसके कारण वहां बंद भी चल रहा है। यहाँ केवल ज्ञानादि के स्वरूप का कथन करते हैं, यथा केवल ज्ञान में केवल शब्द का अर्थ है जो ज्ञान असहाय है, क्या कहा, असहाय, हम असहाय किसको कहते, अनाथ बिचारा दीन दुबला उसको असहाय कहते हैं ना, तो असहाय ने दूसरे किसी दूसरे सहाय की निमित्त की बिल्कुल वहां कुछ हुआ तो है ही नहीं उसके, अर्थात इंद्रिय आलोक, आलोक किसको कहते हैं मालूम नहीं, हाँ आलोक प्रकाश को कहते, आलोक यानी आलोक आकाश, आलोक यानी प्रकाश, और ये हम कहते हैं लोकालोक यानी लोक और अलोक, वहां प्रकाश की बात नहीं है, ये रत्नगण शावकाचार्य में आते हैं सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पण, स आलोक वहाँ अलोक है, आलोक नहीं है। ये हमने बात की थी अभी वहाँ ग्वालियर में, तो एक वहाँ प्रवचन कर पंडित थे, उन्होंने बोला इसका आलोक हम अर्थ करते थे, अलोक नहीं। आलोक थोड़ी प्रकाश की थोड़ी बात में, अलोक यानी अलोक आकाश और आलोक यानी प्रकाश। दूसरा था तो इंद्रिय आलोक और मन की अपेक्षा के बिना होता है। यहाँ जो ज्ञान है उसमें अन्य बाह्य किसी चीजों की, जैसे छद्मस्थ के ज्ञान में इनका निमित्त बनता है, इंद्रिय का है, आलोक है, अगर मन है, इस प्रकार केवल जो ज्ञान वह केवल ज्ञान है। यानी मात्र ओनली जो सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट अर्थों में अर्थ है ने पदार्थ, पदार्थ है ने द्रव्य, कैसे कैसे द्रव्यों को जानते हैं तो कहते सूक्ष्म को कहते हैं। व्यवहित और विप्रकृष्ट का अर्थ क्या होता है, हम उसको कहते हैं दूरवर्ती और अंतरित। अंतरित इन्होंने हाँ सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट पदार्थों के कारण उसमें कोई व्यवधान नहीं होता, यानी वो ज्ञान रुकता नहीं है। देखो हम इसका अर्थ कहेंगे, अन्य शास्त्रों में शब्द क्या आता है, सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती। सूक्ष्म यानी जो परमाणु वगैरह वो कैसे सूक्ष्म है, हम इंद्रियों के द्वारा जानते हैं तो उसमें सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हमारे इंद्रियों की जानने की रेंज है, उस रेंज के ऊपर और नीचे को हम नहीं जानते। जैसे सुनने की भी जो साउंड वेव उसकी रेंज में हम सुन सकते हैं, उसके नीचे की वेव नहीं। देखने की भी विशिष्ट वो जो है उसको देख सकते, उसके नीचे ऊपर को नहीं देख सकते। इस तरह से तो यहाँ कहते सूक्ष्म को नहीं जानते हम, परमाणु आदि को नहीं जानते, तो यहाँ कहते ये सूक्ष्म को भी जान लेते हैं। अंतरित यानी दूरवर्ती पदार्थों को, दूरवर्ती यानी अभी स्वर्ग नरक आदि को हम तो नहीं जानते, वो तो जान लेते हैं। और अंतरित यानी काल से, भविष्यकाल या भूतकाल में जो बीत चुका है, जो होने वाला है, यानी वो काल का भी उनके कोई व्यवधान नहीं होता, यानी कोई इसको कहे ना कि बाधा नहीं आती, ऑब्स्टेकल नहीं, इसको कहेंगे वो तो सबको जान लेते हैं। नहीं नहीं व्यवहित और विप्रकृष्ट ये अभी आगे कुछ उसका नहीं नहीं व्यवधान में नहीं बाधा, व्यवधान से रहित नहीं बाधा रहित। व्यवहित और विप्रकृष्ट जो कहते हैं सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट अर्थों में अप्रतिहत प्रसार वाला होता है। अप्रतिहत यानी उसको कोई रोकने वाला नहीं है, यानी सूक्ष्म पदार्थों का भी आरोपी द्रव्य है, उसको जानने से भी कोई रोक नहीं सकता। उसमें कोई संस्कृत डिक्शनरी है अंदर, वो छोटी लाल वाली है वो। क्योंकि उन्होंने वो ओरिजिनली अतीन्द्रियेषु अर्थेषु वहां उन्होंने अतीन्द्रिय अर्थ बताया है, ऊपर अतीन्द्रियेषु अर्थेषु सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टेषु यानी जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जाते हैं ऐसे पदार्थों की बात यहाँ की। व्यवहित डिक्शनरी में कुछ अर्थ मिलेगा तो व्यवहित इंटरप्टेड ऑब्स्ट्रक्टेड, व्यवहित ने इंटरप्टेड ऑब्स्ट्रक्टेड ये ऑब्स्ट्रक्शन किसके द्वारा होगा? बीच में कोई मेरु पर्वत है, कोई पर्वत है, ये दीवार है तो हमें वहां से दिखाई नहीं देता है। नहीं, व्यवहित है बाधा वाले, उससे वो नहीं रोका जाता। व्यवहित है ऑब्स्ट्रक्टेड, इंटरप्टेड। जैसे हम देख रहे थे, अगर वो बीच में दीवार आई तो कुछ नहीं दिखा रहा, तो उसको कहेंगे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ना अभी बीच में, तो वो केवल ज्ञान के आड़े नहीं आएगा। अभी विप्रकृष्ट का अर्थ भी निकाल देते हैं, उसके वो में ही है ना विप्रकृष्ट, विप्र कफ बघम में होगा विप्र। विप्र विप्र क्या है? विप्रकृष्ट, विप्रकर्ष यानी डिस्टेंस, विप्रकृष्ट यानी डिस्टेंट यानी दूरवर्ती, जिसको हमने कहा विप्रकृष्ट यानी दूरवर्ती। विप्रकर्ष का अर्थ होता है डिस्टेंस। ये संस्कृत शब्द है ना ओरिजिनल, ये दोनों ही मिल गए। चलो अच्छा, ये मेरे फादर इन लॉ की है, मेरे फादर इन लॉ यूज करे, 1912 में प्रकाशित हुई है ये। घर का सारा कचरा मैं लेके आई थी, कितना यूज किया हमने इसको, ये भाषांतर में भी, वो हिंदी भी बहुत पुरानी है, ये ज्यादा पुरानी है।
मेरे पिताजी उस जमाने के लिए
ये संस्कृत, संस्कृत इंटू इंग्लिश है, दूसरी भी एक फटी पुरानी इतनी सी जाड़ी, वो इंग्लिश इंटू ऐसा कुछ है। चलो सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट समझ में है ना? सूक्ष्म यानी बिल्कुल परमाणु जैसे सूक्ष्म पदार्थ जो है, अभी हम यहाँ अरूपी द्रव्य भी ले सकते कि उसको भी जानने से कोई नहीं रुकता। व्यवहित यानी बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, पर्वत आदि बीच में है तो भी उसके उस पार का भी सब देख सकते हैं हम, नहीं वो केवल ज्ञान। विप्रकृष्ट यानी दूरवर्ती पदार्थ, इन अर्थों में यानी ऐसे पदार्थों के बारे में अप्रतिहत प्रसार वाला है, यानी उसको कोई रोक नहीं सकते, यानी ऐसे अर्थों को जानने में भी वो रुकते ही नहीं, यानी वो जान लेते हैं, इसका अर्थ है। हाँ, अप्रतिहत यानी उसको रोकने वाला कोई नहीं है, बिना रुकावट के जान लेते हैं। अप्रतियत ने बिना रुकावट के जान लेते हैं, प्रसार वाला है नहीं, उसमें भी जानता है, प्रसारता है नहीं, जानता है, जो करण क्रम और व्यवधान से रहित है। क्या बात है, करण से रहित है नहीं, क्या साधन कोई नहीं उसमें। करण का अर्थ इंद्रिय भी होता है, करण का अर्थ साधन भी होता है, अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई निमित्त वहां नहीं है। क्रम रहित है ने वो एट ए टाइम एक ही समय में युगपद जान लेते हैं तो क्रम रहित है, और व्यवधान से रहित, व्यवधान का ये अर्थ यही है कि उसमें कोई ऑब्स्टेकल बाधा व्यवधान नहीं होता है, यानी उसमें कोई व्यवधान का एग्जैक्ट अर्थ होता है रुकावट ही कहेंगे ना, व्यवधान का अर्थ देख लेते हैं। व्यवगत व्यवधान, इंटरवेंशन, इंटरवल, ये स्क्रीन भी उसका किया है व्यवधान, इंटरवेंशन अ स्क्रीन किंवा इंटरवल यानी रुकावट नहीं होती बीच में कोई. तथा जिसकी वृत्ति ज्ञानावरण कर्म के पूरा क्षय होने से प्रकट हुई है. पूरा क्षय होता है ना, सभी ज्ञानावरण पूर्ण रीति से नष्ट हो गए तभी ये प्रकट हो गए हैं. उसकी वृत्ति प्रकट हुई नहीं, उसकी पर्याय जो है वो तब प्रकट हुई है. ऐसा निरतिशय और अनुत्तर ज्योति स्वरूप, अनुत्तर उसके ऊपर कुछ नहीं है, यानी इससे बढ़कर कुछ नहीं, केवल ज्ञान है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है. फिर भी उसको जो अनंत्य विशेषण दिया है, अनंत्य वह उसके अविनश्वरपने की प्रसिद्धि के लिए दिया है, यानी अनंत जो कहते हैं उसको अनंत्य कह दिया उसको. ये श्लोक बाद में लिखा है मेरे ख्याल से, क्षायकम एकम अनंतम त्रिकाल सर्वार्थ युगपद अवभासी निरतिशयम अंत्यम अच्युतम अव्यवधानम च केवलम ज्ञानम. तो निरतिशय मनंत्यम चाहिए, यहाँ करेक्शन होना चाहिए. 31 में है कि अनंत्यम, क्योंकि वहाँ अनंत्य शब्द बताया नीचे उन्होंने और ऊपर अंत्य लिखा है, अनंत्य लिखा है, अनंत्य चाहिए था, अनंत्य प्रमेय अनंत्यै तत् परिच्छेदक ज्ञान शक्ति नाम अपि अनंत्य सिद्धे है, अनंत्य ही लिखा है. निरतिशय प्राकृत में नीचे से 1 2 3 4 5 प्रमेय अनंत्यै तत् वहां पर भी पुनरानंत्य विशेषण यहाँ पर भी अनंत्य ही लिखा है. ठीक है, विशेषण दिया है, हम पढ़ेंगे उसको. फिर भी उसको जो अनंत्य विशेषण दिया है वह उसके अविनश पने की प्रसिद्धि के लिए दिया है, क्योंकि जैसे घट का प्रध्वंसा भाव सादी अनंत होता है, उसी प्रकार क्षायिक भाव के सादी अनंत स्वरूप से अवस्थान का नियम उपलब्ध होता है. जो क्षायिक भाव है वो कैसा है, पहले नहीं था, प्रकट हुआ है और अनंत काल तक अभी वो रहेगा, इसलिए उसको सादी अनंत रूप कहा. घट का प्रध्वंसा भाव सादी अनंत है. हाँ, ये प्रध्वंसा भाव किसको कहते, वर्तमान पर्याय का भविष्य काल पूर्व नहीं, वो प्राग भाव हुआ, भविष्यकालीन पर्याय में अभाव होना, अभाव है. घट का प्रध्वंसा भाव, घटस्य प्रध्वंसा भाववत सादी अपर्यवसित स्वरूपेण. यानी वो वर्तमान का जो है वो तो वर्तमान नष्ट हो जाएगी ना, तो अनंत काल तक अभी वो नहीं रहेगा उस अपेक्षा से लेना उसको। अनंत की सभी पर्याय में वर्तमान का, वर्तमान पर्याय का भविष्य काल में अभाव, क्योंकि वो तो नष्ट पर्याय में तो नष्ट होने वाली है ना, इसलिए उस अपेक्षा से बताया। ये नष्ट हुए तो अनंत काल तक अभी नष्ट ही है, अब ये प्रकट हुआ तो अनंत काल तक प्रकट ही है, यानी वो क्षय जो हुआ है ना, कर्मों का क्षय की अपेक्षा से क्षायिक कहा उसको, और ज्ञान की अपेक्षा से कहेंगे तो वो प्रकट हुआ कहेंगे, तो प्रकट हुआ है तो अनंत काल तक रहेगा। हाँ, अनंत काल तक वो प्रध्वंसा भाव रहेगा उसका, उत्पन्न हुआ है तो अनंत काल तक रहेगा। वो रहेगा कायम, ये क्षायिक भाव साधी अनंत है, अथवा केवल ज्ञान का अनंत यह विशेषण वहां अनंत्य लिखा था, यहां अनंत लिया भी, कहां लिखा अथवा केवल ज्ञान का अनंत यह विशेषण समस्त द्रव्य और उनकी अनंत पर्यायों को विषय करने वाले उस केवल ज्ञान के परमोत्कृष्ट अनंत परिणाम पने की प्रसिद्धि के लिए जानना चाहिए। क्योंकि वो इतने सारे द्रव्य और पर्यायों को जानता है सबके, कारण कि प्रमेय अनंत है, अतः उनकी परिच्छेदक ज्ञान शक्तियों को भी अनंत सिद्ध होने में प्रतिषेध का अभाव है। अनंत प्रमेय के कारण ज्ञान भी अनंत है ऐसा कहते हैं, क्योंकि उसको जानने वाला ज्ञान वो भी अनंत है। यह सब कथन केवल उपचार मात्र ही नहीं है, किंतु परमार्थ से ही सकल प्रमेय राशि के अनंत गुणरूप सकल प्रमेय राशे अनंत गुणानाम और आगम प्रमाण से जानने में आने वाली ऐसी केवल ज्ञान संबंधी अविभाग प्रतिच्छेद सामर्थ्य उपलब्ध होती है, यह हमारे कथन के लिए प्रूफ मिला। जयदेवला का की के ये केवल उपचार नहीं है, क्या लिखा है, सकल प्रमेय राशि के अनंत गुण रूप नहीं, ऊपर अनंत गुणा नाम है, अनंत गुणा वाला है, अनंत गुण रूप है, जितना प्रमेय है उतना ही ज्ञान नहीं है, उससे अनंत गुणा है, ख्याल में ना। प्रवचन सार में जो गाथा आती है कि ज्ञान कितना है तो ज्ञेय प्रमाण है और ज्ञेय कितना है तो लोकालोक प्रमाण है, वो तो विशिष्ट अपेक्षित कथन है। अब यहाँ क्या बताए, जितने प्रमेय राशि है पूरी, तीन काल के जितने सारे जो अविभाग प्रतिच्छेद से सब कुछ है, उससे भी अनंत गुणा केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, ये ज्ञान उससे अनंत गुणा है। जयपुर में हम गए थे तो तीन चार लोग आए थे हम ये करने के लिए, झगड़ा अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां वो मान्यता चलती है ना कि केवल ज्ञान उतना ही जितना लोकालोक है, तो कहते आप ऐसा कह रहे, आप पुस्तक में भी लिखते कि अनंत अनंत लोकालोक होते तो भी केवल ज्ञान जान लेता है, इतनी उसमें प्रखर शक्ति है, और ये तो ऐसा कहते आप ऐसा कहते, हमने डायरेक्ट बोल दिया उनको सर्वज्ञ के अभी मान्यता में फेर है, निर्णय नहीं है ऐसा मैंने कहा था। बड़े बड़े लोग आए थे चर्चा करने के लिए। क्या करें,
एक पत्र भी आया ना ग्वालियर से, बता रहे हैं सर्वज जी को
ये लिखते रखना पेज नंबर 131 सोलवे जयदवला। ऐसा कुछ कहेंगे तो प्रूफ बताओ, प्रूफ बताओ करते हैं। इन्हें सकल प्रमेय राशि से अनंत गुणा, कल हमने वो अवधि ज्ञान के उदाहरण द्वारा भी सिद्ध किया था। अवधि ज्ञान कहाँ तक जानता है, तो असंख्यात लोक तक। अरे वहां तो कुछ है ही नहीं ना, नहीं पर उसकी शक्ति इतनी है कि वहां होते तो भी जान लेता। आकाश द्रव्य में इतनी अवगाहन शक्ति है कि उसके अनंत वे भाग में सभी अनंत द्रव्य समा गए लोकाकाश में, जो उसका अनंत वह भाग है। तो ऐसे अनंतानंत होते लोग तो भी उसके अनंत वे भाग में समा जाते। ऐसे केवल ज्ञान में इतनी प्रकट शक्ति है कि एक लोकालोक तो जान ही लिया, उसके अनंत वे भाग में ये पूरी प्रमेय राशि उसके अनंत भाग में जानी गई, उससे अनंत अनंत गुणा उसकी प्रकट शक्ति है। यहाँ लिखा है ना देखो, यह सब केवल उपचार मात्र ही नहीं है। कहने वाले ऐसे कहते वो उपचार से कहते और वो सर्वज्ञ की महिमा बताने के लिए कहते कि अनंत अनंत लोकालोक होते तो भी जानते, तो कहते ये उपचार नहीं है किंतु परमार्थ से ही, यानी परमार्थ से यानी इन रियलिटी निश्चय से ही सकल प्रमेय राशि के अनंत गुणरूप और आगम प्रमाण से जानने में आने वाली, यानी आगम ये उसके लिए प्रूफ है, उससे जो जाना जाता है, ऐसी केवल ज्ञान संबंधी अविभाग प्रतिच्छेद सामर्थ्य उपलब्ध होती है। हमने ये देखा था जब हमने संख्यामान देखा था कि सबसे बढ़कर टॉप मोस्ट अनंतानंत कौन सा है, केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, तो वो इतना अनंत है कि उसके कंपैरिजन में भी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कहा कि जितनी दे राशि उतने वो अनंत है, ऐसा भी नहीं कहा। तो कहते ये तो आगम से सिद्ध होता है, केवल ज्ञान संबंधी अविभाग प्रतिच्छेद सामर्थ्य उपलब्ध होती है। इस प्रकार यथोक्त यानी जैसे बताया है, ऐसे अविभाग प्रतिच्छेदों का अस्तित्व केवल कल्पना रूप नहीं है, वस्तुतः वो द्रव्य है। बहुत अच्छी बात है ये। शाम को यही विषय चल रहा है अभी हमारा तत्वार सूत्र में, उसमें भी केवल ज्ञान की बात कल ही निकली थी अपनी, उसमें कितनी शक्ति है कि अनंतानंद लोक का लोग भी होते, केवल लोग नहीं लोकालोक तो भी जान लेते हैं एक समय की पर्याय में। इसलिए इसकी अनंतता अनुपचरित ही है ऐसा निश्चय करना चाहिए। अगर उसकी लिमिटेड हो जाती ना, लोकालोक इतना ही अगर कहेंगे तो लिमिटेड हुआ, उसका अनंतपना कहाँ रहा, कहाँ भी है, अब कहाँ भी है, अभी ये श्लोक बता रहे ऊपर। चाएकमेकम अनंतम त्रिकाल सर्वार्थ युग पदवभासी निरतिशयम अत्यंतम अच्युतम अव्यवधानम च केवलम ज्ञानम। निरतिशयम अत्यम हुआ निरतिशयम निरतिशयम अनंत्यम चाहिए, निरतिशयम अनंत्यम निरतिशयम अनंत्यम अच्युतम अवध्यानम च केवलम। और न कहीं तो रह गया ऐसा लगता है, निरतिशयम अनंत्यम म के बाद न चाहिए, सिंगल न चाहिए, पेंसिल से करके रखो। निरतिशयम अनंत्यम चित्तम अवधानम च केवलम ज्ञानम। चलो हम नीचे देखते हैं क्या अंत्यम है, अंत में प्राप्त होने वाला है। अच्छा अच्छा, इसलिए अंत्यम लिखा, ठीक है। पेंसिल से किया हुआ निकाल दो। जो क्षायिक है, अभी ऊपर जो बताई थी बात वो गाथा का अर्थ नहीं किया था, वहां आनंद शब्द लिखा था ना वो अलग था, और यहाँ जो अंत लिखा है वो अलग है। जो क्षायिक है केवल ज्ञान का स्वरूप वर्णन करते हैं, एक है अनंत स्वरूप है, ये अनंतम लिखा है। तीनों कालों के समस्त पदार्थों को एक साथ जानने वाला है, निरतिशय है, क्षायोपशमिक ज्ञानों के अंत में प्राप्त होने वाला है। यानी क्षायोपशमिक ज्ञान पहले था, बाद में उसको नष्ट होकर क्षायिक हो गया, अंत में फिर दोबारा क्षायोपशमिक होने वाला नहीं है, कभी च्युत होने वाला नहीं है, अच्युतम। और अव्यवधान में कोई व्यवधान नहीं है, कैसा व्यवधान नहीं है, सूक्ष्म व्यवहित तथा विप्रकृष्ट पदार्थों के व्यवधान से रहित है, वह केवल ज्ञान है। यानी हमने देखी थी ना, उसमें दूरवर्ती को भी जान लेता है, कोई बीच में रुकावट है तो भी जान लेता है। आज बहुत सुंदर वर्णन आया केवल ज्ञान। इसी प्रकार केवल दर्शन का भी व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान के समान ही अपना आवरण करने वाले दर्शनावरण कर्म के अत्यंत क्षय होने से वृत्ति को प्राप्त होने वाले, वृत्ति को प्राप्त होने प्रकट हुई अवस्था उनकी, और समस्त पदार्थों के अवलोकन स्वभाव वाले दर्शनोपयोग के भी, समस्त पदार्थों का अवलोकन हो रहा है ना, उसी को आत्मा का अवलोकन कहा है। आपको याद होगा, ऐसा नहीं कि अपने को ही देखता है और पर को नहीं, ये ऐसा नहीं बात। समस्त पदार्थों अवलोकन स्वभाव वाले दर्शनोपयोग के भी अनंत विशेषण से युक्त केवल संज्ञा के प्राप्त होने पर कोई प्रतिबंध नहीं पाया जाता। यहाँ ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों के विषय में भेद नहीं उपलब्ध होता तथा दोनों समस्त पदार्थों के साक्षात्करण स्वभाव वाले हैं। साक्षात्करण ने उसको साक्षात जानने वाले हैं, इसलिए उन दोनों में एक से ही कार्य चल जाने के कारण दूसरे उपयोग को मानना व्यर्थ है। क्योंकि यानी ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं, ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक समान ही, ऐसा मत मानो। एक क्यों मानेंगे कोई, क्योंकि दोनों ही सभी पदार्थों को आत्मसात करते हैं, साक्षात करते हैं, नहीं क्या प्रतिभास हो जाता है दोनों का ही। क्योंकि असंकीर्ण स्वरूप से, असंकीर्ण स्पष्ट रूप से दिखा है, संकीर्ण ने बहुत संक्षिप्त, और ये संकीर्ण लिमिटेड है, असंकीर्ण विस्तार से उन दोनों का विषय विभाग अनेक बार दिखलाए हैं। असंकीर्ण से नहीं, विस्तार से, इसलिए सकल और विमल, सकल है ने सबको जानने वाला और विमल है ने निर्मल कहो उसको, केवल ज्ञान के समान अकलंक केवल दर्शन भी, अकलंक कलंक रहित वो अकलंक केवल दर्शन भी केवल रूप अवस्था में है ही, यह सिद्ध हुआ। यानी कोई कहेगा केवल दर्शन उसी में गर्भवत समझ लो, तो ऐसा नहीं है, केवल दर्शन भी सेपरेटली है, केवल ज्ञान भी है। अन्यथा आगम विरोध आदि दोषों का होना अपरिहार्य है, नहीं तो आगम विरोध से हमारे कथन में दोष आ जाएगा। ये दा का दो करना, अस्पष्ट प्रिंट आई है वहां पर, अभी कोई है क्या वहां पर करेक्शन? आगे आगे है, वो तो जब आएगा उस समय ज्ञान वैराग्य प्राकृत में वैराग्य हुआ है, वही वैराग्य करना है। अभी हम यहाँ नीचे का पैराग्राफ देख रहे 306 नंबर का, वीर्यांतराय ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण के समूल क्षय से क्या होता है वो देखा। वीर्यांतराय कर्म के निर्मूल क्षय से उद्भूत वृत्ति रूप श्रम और खेद आदि अवस्था का विरोधी अंतराय से रहित अप्रतिहत सामर्थ्य वाला वीर्य अनंत वीर्य कहा जाता है। ये सामर्थ्य भी कैसा अभी उत्पन्न हुआ है, अप्रतिहत, इस सामर्थ्य को रोकने वाला भी कुछ कोई नहीं है। कहाँ गया हूँ नीचे, वीर्यांतराय प्राकृत पढ़ रही हूँ। निर्मूल प्रक्षयोद्भूत, निर्मूल प्रक्षय उद्भूत वृत्ति श्रमक्लमादि अवस्था विरोधी निरंतराय निरंतराय वीर्यम अप्रतिहत सामर्थ्य अवस्था का विरोधी अंतराय से रहते नहीं, निरंतराय यानी विरोधी अंतराय नहीं समझना, विरोधी के बाद एक कॉमा लगाना। नहीं तो उसका विरोधी अंतराय ऐसा हो जाएगा, अनंत वीर्य कह जाते। देखो फिर से अब यहाँ क्या हुआ, जो वीर्यांतराय आदि जो कर्म है, वीर्यांतराय की बात करते हैं, उसका भी निर्मूल क्षय हो गया है। तो पहले क्या है, श्रम और खेद आदि अवस्था उत्पन्न होती थी, अब वो नहीं होगी। अभी अंतराय से रहित है, नहीं निरंतराय है, और कैसा है, अप्रतिहत सामर्थ्य वाला है। अब इस सामर्थ्य को कोई रोक नहीं सकता। किसकी सामर्थ्य की बात है, शरीर के आत्मा की, आत्मा की बात है। परंतु वह इस भगवान के अशेष पदार्थ विषयक ध्रुव रूपे ने स्थायी उपयोग परिणाम के होने पर भी अखेद भाव से ग्रहण करने में प्रवृत्त होता हुआ उपयोग सहित ही है ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि उसके बलाधान के बिना निरंतर उपयोग रूप वृत्ति नहीं बन सकती। देखो अशेषणी बिना कुछ बाकी रखे बिना सभी पदार्थों को उपयोग रूप परिणाम में जानते हैं। यहाँ क्या बताना चाहते हैं, केवल ज्ञान क्यों हुआ, तो कहते ज्ञानावरण का क्षय हुआ, परंतु वो जो उपयोग रूप चलता है ना, सबको एक उपयोग रूप जानना, तो उसमें टिकाए रखने के लिए ये अनंत वीर्य की जरूरत है। यह क्या लिखो, देखो हम फिर पढ़ेंगे। उस भगवान के
अखेद
है, यानी वीर्य में तो खेद रहित पना भी होता है और अंतरायपना भी रहित होता है और सामर्थ्य भी होता है, उसके इतने सारे गुण बताए। देखो क्या कहते हैं, फिर इस वाक्य को पढ़ेंगे सेकंड लाइन। परंतु वह इस भगवान के अशेष पदार्थ विषय ध्रुव रूप उपयोग, भगवान जो है केवल ज्ञानी, वो कैसे अशेष पदार्थ विषय यानी संपूर्ण पदार्थ विषय, अशेष यानी संपूर्ण सभी पदार्थ विषय, कुछ बाकी रखे बिना ध्रुव रूप यानी स्थायी उपयोग, यानी उपयोग यहाँ से वहाँ पलटता नहीं है, स्थायी स्थिर रहता है। उस परिणाम के होने पर भी अखेद भाव से ग्रहण करने में प्रवृत्त होता हुआ उपयोग सही थी है। ये कैसा प्रवृत्त हो रहे अखेद, उसमें उसके कोई खेद नहीं है। हमने कोई ये आपको वेट लिफ्टर होते हैं ना, वेट लिफ्टिंग करते कितने घंटे तक पकड़ के रखते हैं, फिर क्या होता है खेद उत्पन्न होता है तो छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी ये सब जानकर खेद होगा कि नहीं, ऐसा कहते तो कहते हैं अखेद भाव से ग्रहण करने में ही वो उपयोग कैसे अखेद भाव से उसको जानते रहता है, क्योंकि उसके बलाधान के बिना, यानी यहाँ अगर वो जानते रहने का बल नहीं होता तो वो बलाधान के बिना निरंतर उपयोग रूप प्रवृत्ति नहीं बन सकती। यानी सब कुछ जान लिया परंतु निरंतर उसको जानते रहे, उसमें खेद और कमजोरी नहीं प्रकट होवे, ऐसा अनंत वीर्य वहां जाना चाहिए। ख्याल में ना बतिया कहना चाहते हैं वो तो रूप की बात हम बता सकते हैं। वैसे एक द्रव्य में पूरे अनंत गुण है और उसकी अलग अलग भी बातें हम करेंगे तो वो तो बल उसको वो वीर्य गुण का कार्य। यहाँ पर भी कहीं पर भी अभी तक हमने जो कर्मकांड वगैरह पढ़े हैं उसमें क्षोभम ज्ञान की भी जहाँ बातें आती है वहाँ मात्र क्षोभम ज्ञान, यानी ज्ञानावरण के क्षोभम से ऐसा नहीं कहा। हमारा जो मति ज्ञान भी चल रहा है वो मति ज्ञानावरण के और वीर्यांतराय के क्षोभम से, यानी जो जानना होता है उसमें भी वो वीर्य का, परंतु वो कैसा वीर्य का भी क्षोभम चला था। अब ये वीर्य भी कैसा हुआ, एक क्षायिक वीर्य उत्पन्न हुआ। अन्यथा अभी अन्यथा यदि ऐसा नहीं होता तो हम लोगों के उपयोग के समान अरिहंत केवली के उपयोग के भी सामर्थ्य के बिना अनवस्थान का प्रसंग, अनवस्थान अवस्थान यानी टिके रखना, अनवस्थान यानी छूट जाना। यहाँ अरिहंत शब्द डाले ना, केवली के उपयोग के समान उपयोग के भी सामर्थ्य के बिना अनवस्थान का प्रसंग प्राप्त होता, कहा भी है। अभी यहाँ श्लोक बताए उसके लिए ये कैसा है उसका राग, तवो लिखा है, तव वीर्य विघ्न विलयेन समभवतनंत वीर्यता तत्र सकल भुवनादिगम प्रभृति स्वशक्तिभिरवस्थितो भवानीति। उसका अर्थ कहते हैं हे भगवान आपके, अच्छा तव ने आपके वीर्यांतराय कर्म का विलय हो जाने से वीर्य विघ्न विलयेन अनंत वीर्य शक्ति प्रकट हुई है, समभवत अनंत वीर्यता यानी अनंत वीर्य प्रकट हुआ। अतः ऐसी अवस्था में समस्त भुवन के जानने आदि अपनी शक्तियों के द्वारा आप अवस्थित हो, यानी उस रूप टिकाए रखने का कार्य अनंत वीर्य कर रहा है। केवल ज्ञानी ने जान लिया एक समय में, फिर वो जो वैसा ही उसमें टिकाए रखना ये अनंत वीर्य का कार्य चल रहा है। इस कथन से आत्यंतिक अनंत सुख परिणाम भी इस भगवान के व्याख्यान किया गया जानना चाहिए, यानी इसी कथन में अनंत सुख परिणाम भी गर्भित है, क्योंकि जिसकी अनंत ज्ञान अनंत दर्शन और अनंत वीर्य से सामर्थ्य वृद्धि को प्राप्त हुई है, जो मोह रहित है और जो ज्ञान और वैराग्य की अतिशय परम काष्ठा पर अधिरूढ़ है, जिसका परम निर्वाण रूपी वस्त्र है, ऐसे सुख की आत्यंतिक रूप से उत्पत्ति उपलब्ध होती है। आत्यंतिक यानी वो भी परमोच्च उसको सर्वोत्कृष्ट यानी जिसको हम कहें अनंत सुख उत्पन्न होता है। किंतु ज्ञान और वैराग्य के अतिशय से उत्पन्न हुए सुख से अन्य सुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं ही है। यानी कोई अन्य सुख नाम की वस्तु ही नहीं है, क्योंकि समझ में है ना, यानी सुख किसमें, ज्ञान और वैराग्य ही सुख है, अन्य कोई सुख नाम की वस्तु ही इस विश्व में नहीं है। क्योंकि जो सराग सुख है जो हम मान लेते हैं, तो जो सराग सुख है वह न्याय पूर्वक निष्ठुरता से विचार किया गया एकांत से दुख रूप ही है। कथनचित दुख रूप नहीं कहा, एकांत दुख रूप कहा, उसी प्रकार कहा भी है। अब यहाँ जो बताया है, सपरम वाहा सहियम विच्छिन्नम बंद कारणम विषमम जम इंदिये लब्धम तम सोखम दुखमेव सदा। ये कहाँ पड़ा है बोलो, प्रवचन सार में। सपरम बाधा संयम, वीरा दोनों का एक साथ उन्होंने किया। अच्छा, इसका पहले अर्थ कर लेते। जो इंद्रियों के निमित्त से प्राप्त होने वाला सुख है वह पराश्रित है, बाधा सहित है, बीच बीच में छूट जाने वाला है, विच्छिन्नम, क्योंकि साता वेदनी चलता रहे तो इसको हुआ तो सुख रूप उसकी कल्पनाएं चलेगी, नहीं तो वो तो अन्य अन्य चीजों का लक्ष्य करके स्वतः दुख रूप परिणामित होता रहेगा। और कैसे बंध का कारण है और विषम है, वास्तव में वह सदाकाल दुख स्वरूप ही है, दुखमेव सदा, वास्तव में दुख रूप ही है। और फिर हमने उसको सुख मान लिया तो हम क्या करें, संसार में बैठो, जिसमें सुख मानना है उसी में रहेगा। अभी इसका कैसे रहा, विराग हेतु प्रभवम न चेत सुखम न नाम किंचिदतीति तावयम सचेन्निमित्तं स्फुटमेव नास्ति तत्त्वदन्यतः सत्त्वयेन केवलम्। ये लंबा है। विराग हेतु प्रभवम न चेत सुखम, इसलिए नहीं, ऊपर जो सुख विराग भाव को निमित्त कर नहीं उत्पन्न हुआ है, विराग हेतु प्रभव न चेत सुखम, वो सुखी नहीं है। तो जो सुख विराग भाव को निमित्त कर नहीं उत्पन्न हुआ है वह कुछ भी नहीं है, ऐसा हम निश्चय करके स्थित है। न नाम किंचित तद इति स्थिता वयम, वयम मैंने हम, आचार्य कह रहे ऐसा हमने निश्चय कर दिया। यदि वह निमित्त है, कौन वह विराग भाव यदि उसमें निमित्त है, तो आपके सिवाय वह स्पष्ट रूप से अन्य नहीं ही है, यानी वह सुख ही है। आपके सिवाय अन्य नहीं, वह सुख ही है। पहले बताया था जिसमें विराग हेतु नहीं है विराग भाव, तो वह सुख ही नहीं है। जिसमें वो निमित्त है वह आप रूप है, नहीं सुख रूप है। तो यदि वह निमित्त है तो आपके सिवाय वह स्पष्ट रूप से अन्य नहीं ही है, जिससे कि आप में ही केवल निमित्त रूप से अस्तित्व है। यानी ये जो निमित्त रूप कौन है, विराग भाव सच्चे सुख में निमित्त रूप से पाया जाता है, और वही सुख है वास्तव में, अन्य तो सुख है ही नहीं। इसलिए आज तो सभी ये द्रव्य नियोग की बातें आई है। जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत विरति, विरति लिया ना, विराग भाव लिया, तो अनंत विरति की प्रधानता है। जो अनुपरत वृत्ति वाला है, अनु उपरत, उपरत होना है नहीं नष्ट होना, अनुपरत वृत्ति वाला है यानी अनंत वाला है ना, नष्ट नहीं, अविनष्ट कहो ना आप उसको, अविनष्ट स्वरूप है। जो निरतिशय है, स्वभावभूत आत्मा को उपादान करके जो सिद्ध होता है, यानी आत्मा से ही उत्पन्न होता है, उपादान से ही उसकी उत्पत्ति होती है, सुख आत्मा में से उत्पन्न होता है। अतीन्द्रिय है यानी इंद्रियातीत है, और जो द्वंद्व भाव से रहित है वह अनंत सुख है। द्वंद्व इसमें दो पना नहीं है। इससे असाता वेदिनी के उदय का सद्भाव होने से संयोग करना, संयोग नहीं, संयोग केवली भगवान में अनंत सुखाभाव और उसके साथ होने वाली कवलाहार वृत्ति का निश्चय करने वाला वादी निराकृत हो गया। क्या कहना चाहते हैं? कोई ऐसा कहेगा कि केवली के असाता वेदिनी का सद्भाव होने से उसको अनंत सुख का अभाव है और उसके कारण वहां कवलाहार भी है, ऐसे कहने वाले का निराकरण हो गया है, क्योंकि उसमें उस यानी असाता वेदनीय का उदय सहकारी कारणों की विकलता के कारण परघात के उदय के समान अकिंचित करें। क्या कहता है? ये तो उनका सुख तो कुछ इससे कर्मोत्पन्न तो है ही नहीं, आत्मोत्पन्न है, तो वो को कुछ सुख दुख कुछ उत्पन्न करने वाला तो है ही नहीं है। तो जैसे यहाँ परघात का उदय है परंतु उसका कार्य कुछ नहीं है, वैसे असाता वेदिनी भी कुछ कार्य करने में सफल नहीं है। परघात हुआ है, परघात करना, परघात एक नाम कर्म का नाम है। इसलिए उनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत विरति और अनंत सुख परिणाम पना होने से संयोग केवली भगवान सिद्ध परमेष्ठी के समान भोजन नहीं करते हैं, यह सिद्ध हुआ। यहां भी इनको सिद्ध करना पड़ा, देर बोला, यहीं पर हम रुकेंगे अभी। हाँ वही तो, उसके वो तो तभी तभी बने थे ना नए नए। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देतमो।